तो भगवान को अति प्रिय है भोग, भोग लगाइए, भोगनाएं मिटाइए। भोग में इतनी बड़ी ताकत है जो बड़ी से बड़ी भोगनाओं को समाप्त करने की ताकत रखता है। भोग से भोगनाएं समाप्त हो जाती है। भोग लगाने से इमीडिएट पुण्यों में वृद्धि होती है और भोगनाएं आती इसलिए हैं, कोई ना कोई पाप का प्रभाव सामने है, चाहे वो इस जन्म का हो या पूर्व जन्म का। जब पाप का प्रभाव सामने होता है तो कोई ना कोई भोगनाएं जरूर होती है, शरीर में हो, संबंधों में हो, कारोबार में हो, कहीं भी हो, भोगनाएं जरूर हैं। और इन भोगनाओं को यदि हटाना है तो इमीजिएटली पुण्यों में वृद्धि चाहिए। जैसे ही पुण्य का प्रभाव बढ़ेगा, पाप का प्रभाव डाउन हो जाएगा और भोगनाएं अपने आप क्या हो जाएंगी, डाउन हो जाएंगी। तो भोग लगाने से इमीजिएटली पुण्यों में वृद्धि होती है। कैसे होती है भोग लगाने से, भोगनाएं कैसे समाप्त होती है, इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी कि कुछ भाई बहनों के मन में एक संशय होता होगा कि जो ये हम रीति रस्म करते भोग लगाने की, क्या ये खाली एक रीति रस्म है या ये भोग भगवान के पास पहुंचता है या नहीं। अगर उसमें भावनाएं हैं तो 100% पहुंचता है। और यदि केवल मैंने नियम को फॉलो किया है, मेरा नियम है भाई मैं लगाता ही हूँ, मैं भगवान के सामने रखता ही हूँ, उसमें भावना नहीं, केवल नियम को फॉलो कर रहे हैं, तो वो पता नहीं जाता है कि नहीं, उसका हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जिसमें भावनाएं हैं वो 100% पहुंचता है। जब बाबा अव्यक्त हुए मधुबन में, तीनों टाइम बाबा को भोग ऑफर किया जाता था। ट्रांस में जाने वाली बहनें भोग लेकर जाती थी और एक दो मिनट का मैसेज भी लेकर आती थी। एक बार बाबा ने थाली वापस कर दी, पकड़ी नहीं हाथ में, और बाबा ने कहा बच्ची पहले पूरा भोजन चेक करो और फिर दोबारा थाली लेकर आओ। पहली बार ऐसा हुआ था। वो संदेशी नीचे आई, भंडारे में गई और निमित आत्मा जो थी उसको बोला कि आज बाबा ने भोग स्वीकार नहीं किया, थाली नहीं ली हाथ में, वापस कर दी और कहा पहले भोजन को चेक करो उसके बाद लेकर आना। अब सारा भोजन चेक होने लगा, चखने लगे, एक सब्जी में नमक नहीं था। अब ऐसा नहीं कि बाबा को कोई हाई या लो बीपी है कि उसको नमक वाला ही चाहिए, ऐसा नहीं था। लेकिन बाबा ब्रह्मा भोजन की बड़ी रिस्पेक्ट रखते हैं, बड़े सम्मान। जब ब्रह्मा बाबा होते थे तो उस समय बाबा कहते थे बच्चे ये ब्रह्मा भोजन दुख भंजन भोजन है, ये ब्रह्मा भोजन का एक दाना अगर अंदर चला जाए भावना से तो पता नहीं कितने दुखों को नष्ट कर दे, कितने कड़े संस्कारों को हर ले, बुरी आदतों को, व्यसनों को खत्म कर दे, चित्त को चैन दे दे। ये दुख भंजन भोजन है ब्रह्मा भोजन, इसमें भगवान की शक्ति भर के आती है, उसकी दृष्टि पड़कर आती है, इसका तो एक एक दाना भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, थाली भी धो धो के पी जाओ। और उस समय ये होता था कि ब्रह्मा भोजन खाने के बाद थाली भी सभी धो धो करके पीते थे, एक अन्न का दाना भी वेस्ट नहीं जाता था, इतना रिस्पेक्ट बाबा ब्रह्मा भोजन का रखते थे। आज सब्जी में नमक नहीं है, खाने वाले 400-500 हैं, कोई खाएगा, कोई नाक चढ़ाएगा, कोई फेंकेगा, कोई कुछ बोलेगा, ब्रह्मा भोजन का अपमान। और जहां एक भी संकल्प नेगेटिव चल गया भोग के प्रति, ब्रह्मा भोजन के प्रति, तो उसकी सारी शक्ति खत्म, वो केवल फिर भोजन है। उसमें जो एक पावर है भगवान की वो उसमें से क्या हो जाती है। इसीलिए बाबा ने ये मिस्टेक ठीक कराई और उस दिन से ये नियम बनाया कि बाबा को भोग लगाने से पहले जो निमित आत्मा है भंडारे में वो पहले भोजन को चखे, क्योंकि भोग लगते ही सीधा भोजन कहाँ जाता है, डाइनिंग में, पहले चखे फिर थाली में भरा जाए और फिर बाबा को लेकिन एक ही व्यक्ति चखे, ये नहीं कि दस बना रहे तो दस ही चखे, फिर वो झूठा हो जाएगा। जो निमित्त आत्मा है वो ही भोजन को चखे, फिर बाबा को भोग लगाए। इसलिए ये मिस्टेक ठीक कराई। एक बार ऐसे ही एक संदेशी भोग की थाली लेकर के गई, तो बाबा ने जैसे ही थाली पकड़ी, डब्बी खोली, तो उसमें से सांप निकल के भागा। बाबा मुस्कुराए और कहा, देखो बच्ची कहाँ गलती हुई है, जाओ देख के आऊं, वापस ले जाऊं। अब वो भी डरती हुई आई कि मैं तो भोजन भर के ले गई थी, ये सांप कहाँ से निकला। जब नीचे जाकर देखा डब्बियां खोल खोल के, तो चावल की डब्बी में इतना लंबा बाल पड़ा था। उस बाल का बाबा ने क्या बना के दिखा दिया, सांप। देखिए किसको भोग लगा रहे हैं हम, कैसे लगाना चाहिए। वो हमारे दाल चावल का भूखा थोड़ा ही है, वो हमारी भावनाओं का भूखा है। कई जगह मैंने देखा है कैसे भोग लगाते हैं बाबा को, चावल रख देंगे, उसी पे दाल रख देंगे, उसी पर रोटी रख देंगे, ले खा ले। क्यों भाई, तुम खा लोगे ऐसे, हम खा लेंगे ऐसे। हमारे घर में एक गेस्ट आ जाता है तो हम उसकी कितनी खातरी करते हैं। हमारी आर्थिक स्थिति ठीक ना हो तो भी एक कोने में हम डाइनिंग टेबल जरूर सजा के रखते, भले कुछ जमीन पे खाते हैं, भले कुछ जमीन पे खाते, डाइनिंग टेबल यूज नहीं करते, पर मेरे घर में डाइनिंग टेबल जरूर पड़ी होगी। किस लिए? मेरे घर में एक डिनर सेट भी जरूर होगा, भले मैं टूटी फूटी थाली में खाऊं, परंतु एक डिनर सेट फर्स्ट क्लास मेरी अलमारी में जरूर होगा। किस लिए? हम यहाँ के गेस्ट के लिए एक अच्छे से अच्छा कीमती डाइनिंग टेबल रख सकते हैं, कोने में बढ़िया से बढ़िया डिनर सेट खरीद के रख सकते हैं, और भगवान को यूं ही चला देते हैं। जो इस दुनिया का सबसे बड़ा मेहमान है, उससे बड़ा मेहमान, उससे बड़ा वीआईपी कोई हो सकता है? स्पेशल गेस्ट है वो मेरे लिए, और उसको हम कैसे चला देते हैं? चला रही है उसको हम, नहीं चाहिए उसको ये भोग प्रसाद। वो केवल भावनाओं का भूखा है, और भाड़ा भी भावनाओं का ही देगा। तो यदि हम बाबा को भोग लगाएं तो कितनी श्रद्धा से लगाएं, उस पे एक फूल भी रखूं तो ऐसे रखूं कि भगवान विवश हो जाए उसमें से भी भावनाएं खींचने के लिए। एक फूल भी इतनी भावना से रखा है, भूखा है वो, तृप्त करना है। मेरी ओर से मेरा भगवान एक भी दिन भूखा ना रह जाए, तृप्त करना है हर रोज उसको अपनी भावनाओं से। तो हम विशेष ध्यान रखेंगे इन चीजों का। जादूगर भी बहुत बड़ा है, वो जादूगरी दिखाई है उसने और फिर दिखाएगा। एक बार जब ब्रह्मा बाबा थे, बेगरी पाठ चल रहा था, यज्ञ में कुछ भी नहीं था खाने को, गुरुवार का दिन था, बाबा को भोग लगाना था। संदेशियां भोग लगाती थी, पूरे किचन में एक मुट्ठी मिश्री और एक मुट्ठी इलायची मिली बस, भोग लगाने को कुछ भी नहीं था। कम से कम 100 भाई बहने आए हुए थे, बैठे थे जो हिस्ट्री हॉल में। बहन ने कहा, बाबा एक ही मुट्ठी मिश्री है, एक ही मुट्ठी इलायची है। बाबा मुस्कुराए और कहा, कोई बात नहीं, तुम भोग लगाओ। भोग लगाया। भोग लगाने के बाद बाबा ने कहा, बच्ची बांटो सबको, भोग बांटो सबको। वही क्लास में बंटता था हिस्ट्री हॉल में, बांटो। अब वो बहन तो घबरा गई, एक मुट्ठी मिश्री और एक मुट्ठी इलायची और बैठे हैं 100 लोग, कैसे बांटूं? ये तो 10 को 20 को भी नहीं मिल पाएगा। तो वो अपना संकोच दिखाने लगी बाबा को कि कैसे बांटूं। तो बाबा ने थाली ली, एकदम डिवाइन रूप हो गया बाबा का, थाली ली, खुद अपने आप एक एक के पास गए, और आप मानोगे कि वो भोग की थाली पे ऊपर कवर था, उस कवर में हाथ डालते थे बाबा, और सबको एक एक मुट्ठी मिश्री, एक मुट्ठी इलायची, एक मुट्ठी मिश्री, एक मुट्ठी इलायची पूरे क्लास को दे दिया, वो खत्म नहीं हुआ। ये थी उसकी जादूगरी। जिन्होंने ये सीन अपनी आंखों से देखा था और ये मिस्री खाई थी, वो आज भी उन्होंने ये अनुभव सुनाया कि हमने भी उसमें से शेयर किया, हमने भी खाया, उन्होंने ये अनुभव शेयर किया था। सोचिए बरकत, भोग लगाने से क्या होता है, बरकत होती है, भरपूरता आती है, हमारे भंडारे भरपूर रहते हैं, बरकत होती है। एक बार बाबा सारे इंडिया के कुमारों से मिलने आए, इनवाइट किया गया था कि जितने भी इंडिया में कुमार हैं सब आओ, सबसे बाबा मिलेंगे। तो बाबा महावाक्य सुना रहे थे, हम भी वहीं थे उस समय, मुझे याद है कि हम पीछे पीछे बैठे थे डायमंड हॉल में, सारे कुमार आए हुए थे। तो बाबा उनसे बहुत अच्छी चिट चैट कर रहे थे और बीच में ही बाबा की लहर चेंज हुई, बाबा दो मिनट मौन में बैठे, दृष्टि दी और फिर कहा बाबा को कुमार भी बहुत प्यार करते हैं और स्पेशली भोग भी लगाते हैं, कुमार बाबा को भोग भी लगाते हैं। फिर बाबा ने कहा कुछ कुमार बच्चे बाबा को भोग कैसे लगाते हैं पता है? तो बाबा ने परमिशन मांगी कुमारों से बता दें। तो कुमारों ने कहा यस बताओ। तो कहा कुछ कुमार जो घर से बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं, पढ़ते हैं, वो बाहर का तो खाते नहीं, खुद ही बनाते हैं तो बाबा को भोग लगाते हैं। कुछ कुमार जो व्यस्त रहते जल्दीबाजी में आएंगे, खिचड़ी पुलाव बनाएंगे, यही उनकी फेवरेट होती है, आटा वाटा बनाने के झंझट में वो नहीं जाते, अपना खिचड़ी पोवा पुलाव बनाओ, खाओ, प्रभु के गुण गाओ। तो वो जल्दी जल्दी पुलाव खिचड़ी कुकर में चढ़ाते, विसल लगवाते हैं और फिर फटाफट सीटी उतारेंगे, ढक्कन खोलेंगे और कुकर ही बाबा के सामने रख देंगे, इसी में खा लो। बहुत देर हो रही है बाबा, बिजी हूँ, इसी में ही स्वीकार कर लो। तो जैसे आप हंसे बाबा भी ऐसे ही हंसे थे। तो बाबा ने कहा इन बोले कुमारों से पूछो ये खा लेंगे कुकर में, कितने भी बिजी क्यों ना हो अपने लिए तो प्लेट में निकालेंगे ना। जब अपने आप कुकर में नहीं खा सकते तो बाप कैसे खा सकता है, ठीक है? तो ये नियम नहीं है भोग लगाना, ये भावनाओं का सवाल है कि एक रीति रस्म है, एक नियम है, बाबा को भोग लगा के ही खाना है, पर ये भावनाओं का सवाल है, तृप्त करना है उसको, काम नहीं उतारना। हम केवल काम उतारने के लिए भोग लेकर जाएं तो वो उसके किसी भी काम का नहीं है। अब देखिए कैसे पुण्यों में वृद्धि होती है। सबसे पहले सतगुरु को कौन से दिन भोग लगाया जाता है? गुरुवार, जिसे कहते हैं बृहस्पतिवार। बृहस्पति का मीनिंग क्या है? वृक्ष प्लस पति। ये सारा सृष्टि एक वृक्ष के रूप में है जिसको बाबा ने नाम दिया कल्प वृक्ष। इसका पति कौन है? शिव। आप किसी झाड़ को जब जल देते हैं, खाद देते हैं, तो पत्ते फूल फल को देते हैं या जड़ में देते हैं, कहाँ देते हैं? हम जब भी जल देते हैं, खाद देते हैं, तो वृक्ष की जड़ में डालते हैं और वो और नीचे जाकर वृक्ष के अस्तित्व को टच होकर ऑटोमेटिकली कहाँ पहुंच जाता है? चोटी तक पहुंचता है, पूरे वृक्ष में पहुंच जाता है, ठीक है ना? इसी प्रकार से जब हम अपनी भावनाओं का जल इस कल्प वृक्ष के बीज को देते हैं तो बीज से होता हुआ उसका प्रभाव कहाँ तक पहुंचता है? पूरे वृक्ष को पहुंचता है, पूरे वृक्ष को। और जब उसका प्रभाव, उसका रिटर्न मुझे वापस मिलता है तो वो एक का पदम गुणा होके मिलता है और यहां से मेरे पुण्य बढ़ने शुरू हो जाते हैं। समझ में आया? यहां से मेरे पुण्य बढ़ने शुरू हो जाते हैं। सदगुरुवार को, जब हम गुरुवार को गुरु परम सदगुरु बीज को अपनी भावनाओं का जल ऑफर करते हैं, ऑटोमेटिकली पूरे वृक्ष को पहुंचता है, पूरी सृष्टि की आत्माओं को इनडायरेक्टली वो जाता है और उसका प्रभाव भी मुझे उतने ही बड़े रूप में प्राप्त होता है। तो इससे इमीडिएटली हमारे पुण्यों में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है, पाप का प्रभाव नीचे आता है, भोगनाएं डाउन होती हैं। दूसरा, ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को बहुत बड़ा महत्व दिया गया। इवन बाबा भी दूसरे तीसरे दिन कहते हैं मुरलियों में, तुम्हारे ऊपर कौन सी दशा बैठी है, कौन सी उतर रही है, बृहस्पति की दशा हमें कहाँ लेकर जाएगी, स्वर्ग का भागी बनाएगी। सुख शांति समृद्धि यदि चाहिए तो बृहस्पति नक्षत्र पावरफुल होना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र भी मानता है कि यदि बृहस्पति गुरु ग्रह उच्च दशा का उच्च कोटि का हो तो उसकी कुंडली में गज केसरी योग बनते हैं। गज केसरी योग माना, जिसके दरवाजे पर गज माना हाथी बंधे हो और जिसके पास केसरी माना शेरों जैसी शक्ति हो, ताकत हो। और ये ताकत और ये शक्ति और ये समृद्धि होती है राजाओं के पास। तो जिसकी कुंडली में गज केसरी योग बनते हैं अर्थात उनके जीवन में राजाई योग आने वाले हैं, उनकी लाइफ राजाओं जैसी होती है, सर्वोच्च योग माना गया है। गज केसरी योग राज योग बनाते हैं, राजाई दिलाने जैसे योग बनाते हैं। जिसकी कुंडली में गज केसरी योग होता है सबसे ऊंचा योग माना गया है। जब हम बृहस्पतिवार को इस वृक्ष के पति को प्रसन्न करते हैं तो बृहस्पति की दशा धीरे 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 मेरे अनुकूल, मेरे फेवर में होने लगती है और ये पूरे 21 जन्मों तक मेरे फेवर में रहती है। और मैं तो ये कहूंगी यदि यहाँ हम इस वृक्ष के पति को, बृहस्पति को राजी कर ले तो 21 जन्म तो छोड़ो, पूरे 84 जन्म हम इस गुरु को अपने फेवर में ला सकते हैं। इस बृहस्पति दशा को अपने फेवर श्री योग होता है, सबसे ऊंचा योग माना गया है। जब हम बृहस्पतिवार को इस वृक्ष के पति को प्रसन्न करते हैं तो बृहस्पति की दशा धीरे 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 मेरे अनुकूल, मेरे फेवर में होने लगती है और ये पूरे 21 जन्मों तक मेरे फेवर में रहती है। और मैं तो ये कहूंगी यदि यहाँ हम इस वृक्ष के पति को, बृहस्पति को राजी कर ले तो 21 जन्म तो छोड़ो, पूरे 84 जन्म हम इस गुरु को अपने फेवर में ला सकते हैं, इस बृहस्पति दशा को अपने फेवर में ले सकते हैं और हर जन्म में अपनी कुंडली में गज केसरी योग का निर्माण कर सकते हैं। ये सुंदर सौभाग्य अभी ही परमात्मा ने हमें दिया है। ज्योतिष शास्त्र में यदि बृहस्पति वीक हो तो सबसे पहला प्रभाव उसका हमारी बुद्धि पर, विवेक पर पड़ता है। और जिसका बुद्धि ही खराब हो, विवेक ही खराब हो तो उसका जीवन नरक तुल्य बन जाता है। सोचने समझने की सूझबूझ की शक्ति ही ना हो जिसके पास तो उसका लाइफ कैसा होगा। बृहस्पति बिल्कुल डाउन, कैसा होगा उसका लाइफ, कुछ होगा उसके पास ना, सोचने की ताकत, ना करने की ताकत, ना खाने की ताकत, कुछ भी नहीं होगा उसके पास। तो बृहस्पति दशा का जो सीधा प्रभाव पड़ता है वो हमारी विवेक शक्ति पर पड़ता है, हमारी बुद्धि पर पड़ता है। सद्बुद्धि सद्विवेक प्राप्त होता है और जिसके पास सद्बुद्धि सद्विवेक होता है उसके पास सद श्रेष्ठ शक्तिशाली सोच होते हैं, विचार होते हैं और वैसे ही उसके कर्म और वैसा ही उसका फल, वैसा ही जीवन। तो बृहस्पति दशा को अपने फेवर में लाने के लिए बहुत सुंदर मौका भगवान ने दिया है। हम बृहस्पतिवार को एंजॉय करें, परम सदगुरु को प्रसन्न करें तो गुरु ग्रह मेरा फेवर में आ जाएगा, बृहस्पति मेरे फेवर में आ जाएगा। आया समझ में? और जब बृहस्पति मेरे फेवर में आ जाए, दशा उच्च क्वालिटी की हो जाए तो मेरी लाइफ में क्या बन जाएगा? गज केसरी योग, सुख शांति समृद्धि आनंद सुख सब कुछ मेरे पास होगा, फिर सब कुछ प्राप्त होगा मुझे। तो बृहस्पति का ये इतना बड़ा प्रभाव होता है। अब देखिए ये भोग बनता कहाँ है, कैसे कैसे पुण्यों में वृद्धि होगी। पहली बात तो इस भोग को जो लगवाते हैं, गुरुवार का भोग एक स्वेच्छा से लगाने की बात होती है, उसके नंबर अलग। एक बहनों को कहना पड़े कि भाई जी कल गुरुवार है, शिवरात्रि का ब्रह्म भोजन है, 18 जनवरी का भोग है, उसके अलग नंबर। स्वेच्छा से किया तो 100% आपके, कह करके किया तो 20% शेयर उसको चला गया जिसने करवाया कह करके, आपके हिस्से में कितना बचा? 100 में से कितना बचा, जबकि किया सारा आपने, लेकिन कमीशन कौन ले गया बीच में? जिसने कहे करके करवाया वो कितना कमीशन ले गया? 20%। आपके हिस्से में बचा 80, जबकि पूरा 100 होना चाहिए था। दूसरी बात, बाबा कौन है, पड़ोसी का या मेरा? मेरों के लिए कुछ जिम्मेदारी, कुछ फर्ज होता है या नहीं? मेरे बच्चों के लिए मुझे भोजन बनाना है, पड़ोसी को कहना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए भोजन बना लेना, वो मेरी खुद की ड्यूटी है, मेरा फर्ज है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरे बच्चे हैं, मुझे खुद को बनाना है। बाबा के लिए कहना चाहिए, यस या नो? जो कहते हैं बाबा मेरा है उसके लिए कहना चाहिए? इस सभा में कितने लोग बैठे होंगे लगभग भाई जी, कितने लोग बैठे होंगे लगभग? 1000 के आसपास, ठीक है। एक साल में गुरुवार कितने आते हैं? 51, 52। 10 फेस्टिवल लगा लीजिए जो हमारे अपने त्योहार है, दादी डे है, मम्मा डे है, 18 जनवरी है, शिवरात्रि, दिवाली, होली आदि, रक्षाबंधन, जो भी है 10 त्योहार वैसे लगा लीजिए, और 52 गुरुवार बैठे कितने यहाँ? अब सोचिए, यदि आप 10 लोगों का भी एक ग्रुप बनाए, 10 लोगों का भी, तो क्या मैं मेरे बाबा को और बाबा के बच्चों को नहीं खिला सकती क्या, साल में एक या दो बार? मुश्किल है। 10 लोगों का यदि हम एक ग्रुप बनाएं तो हम एक अच्छा बढ़िया ब्रह्मा भोजन भी कर सकते हैं और साल का एक आलीशान बाबा का भोग का भी कर सकते हैं, बड़े इजीली कर सकते हैं, और इससे भगवान तो राजी होगा, लेकिन बेनिफिट किसको मिलेगा? सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको मिलेगा? मुझे, मेरी बृहस्पत दशा जन्म जन्म के लिए मेरे अनुकूल होने जा रही है। लेकिन कंडीशन क्या हो? भावना मस्ट कंपलसरी, बिना भावनाओं के कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। भावनाओं का होना मस्ट कंपलसरी, ये नहीं कि एक भाई जी आए, लो बहन जी नोटों की गड्डी पकड़ा गई, मेरा भोग लगा दियो कल। बहन जी ने कहा भाई जी आओगे तो? नहीं, ना ना ना, मैं बहुत बिजी हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, लगा देंगे। बहन जी ने शाम को फोन किया, भाई जी आ गए? हाँ बहन जी, आ तो गया, भोग ले जाते? नहीं बहन जी, थक गया मैं तो बहुत ज्यादा। तो जब उसकी थाली ऊपर गई तो बाबा ने भी कहा, अच्छा बच्ची, बच्चे को याद प्यार दे देना, ठीक है, मामला खत्म। जैसी जिसकी भावना। अब एक माता जिसने हफ्ते भर से 10-10 रुपए इकट्ठे किए, बुधवार की शाम को मार्केट जाती है, चुन चुन के अच्छे अच्छे फ्रूट खरीद के लाती है, कुछ हार लेके आती है, फूलों का कांपते हाथों से संकोच करती हुई बहन जी के पास आई, मेरे ये तिल फूल कल बाबा की भोग की थाली में रख लेना, बड़ी श्रद्धा से बड़े प्रेम से लेकर आई हूं। बहन जी ने कहा ठीक है। उसकी वह भावनाओं के तिल फूल बहन जी ने जैसे ही भोग की थाली में रखे और थाली ऊपर गई तो भगवान ने अपना सिंहासन छोड़ा, 10 कदम आगे बढ़ा, सर झुकाया, दोनों हाथों से वो थाली स्वीकार की। ये होता है भावनाओं का भाड़ा। जिस टाइम हम संकल्प कर लेते हैं कि मुझे बाबा को भोग लगाना है, उसी टाइम उसकी दृष्टि मुझ पर पड़नी शुरू हो जाती है। और आप सोचिए, जिसके केवल नाम को जपने मात्र से विघ्न खत्म हो जाते हैं, मृत्यु तक टल जाती है महामृत्युंजय मंत्र के जाप से, अगर उसकी दृष्टि मुझ पर पड़ जाए तो दुनिया में किसी की ताकत है जो मेरी कोई बिगाड़ सके आकर? मेरा बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता इस सृष्टि में, अगर उसकी दृष्टि, उसकी कृपा दृष्टि मुझ पर पड़ जाए तो। लेकिन उसकी दृष्टि खींचने के लिए हमारे दिल में भावनाओं का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। लोग उसको प्रसाद चढ़ाते और मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं डायरेक्ट उसको भोग स्वीकार करा सकूं। और यहां भी यदि मैं आनाकानी करती रही तो क्या होगा? फिर क्या होगा? भगवान के मामले में कंजूसी नहीं। हमारी दादी जानकी का एक स्लोगन और बिल्कुल अजमाया हुआ स्लोगन है, दोगे तो आएगा, रख लोगे तो ठहर जाएगा। दोगे दुगना हो करके वापस आ जाएगा। एक्सपेरिमेंट करके देखिए, लेकिन बशर्ते भावनाएं, भावनाओं को नहीं भूलना, कंडीशन है भावनाएं। तो ये भोग बनता कहाँ है? भैया घड़ी रख दो यहाँ पे। भोग बनता कहाँ है? देखिए आज कलयुग के अंत से हम गुजर रहे हैं। दुनिया में 99% इम्प्योर वातावरण है। कुछ धार्मिक स्थानों को, आध्यात्मिक स्थानों को छोड़ करके इम्प्योरिटी का वातावरण है चहू ओर। काम विकार तो जैसे सुनामी आई है इसकी संसार में, ऐसे फैल रहा है। परम पवित्र सत्ता को भोग लगाना है तो स्थान कैसा चाहिए, कैसे स्थान में हम वो भोग बनाएं। ये जो बाबा के सेवा केंद्र है ये साधारण नहीं है। बाबा ने कई बार अपने मैसेज में कहा है कि जो बाबा के सेवा केंद्र है 24 घंटे में एक बार चक्कर लगाने जरूर आता है वहां, भले वो आधी रात को आए, एक बजे आए, दो बजे आए, पर एक भ्रमण जरूर करता है अपने सेवा केंद्रों पर। कोई कह रहा था ब्रह्मा बाबा वतन में ऊपर क्या करता है, उसके पास वक्त है क्या? जिसके घर इतने हैं कि एड्रेस भी एड्रेस बुक में देखने पड़ते हैं, उसे फुर्सत है क्या? वो कितना बिजी होगा। तो बाबा ने क्या कहा, कई बार कहा कि अपने सेवा केंद्रों पर बाबा क्या करता है, और इवन जिन्होंने अपने घर भी सेवा स्थान बना लिए, जो केवल ट्रस्टी बनकर रह रहे हैं, जिन्होंने बुद्धि से समर्पित कर दिया मेरा सब कुछ, उन घरों में भी भगवान चक्कर लगाने आता है। आप सोचो, कई राम जी की खड़ाऊ मिल गई तो तीर्थ स्थान बन गया, कृष्ण के कदम चिन्ह मिल गए तो बहुत बड़ा मंदिर बन गया, और जहां भगवान का आना जाना हो वो अपने आप में क्या होंगे, उससे बड़ा कोई तीर्थ स्थान होगा इस सृष्टि पर? जहां रोज का उसका आना जाना हो उससे बड़ा कोई तीर्थ स्थान हो सकता है क्या? दूसरा, इन सेवा केंद्रों पर कौन रहता है? ये सृष्टि के वो चार्जेबल स्थान है, वो पवित्र स्थान है जहां बाल ब्रह्मचारी रहते हैं, जहां इम्प्योरिटी का नामो निशान नहीं, जहां सैकड़ों साधक बैठकर साधना करते हैं, जहां रोज भगवान के प्रवचन सुनाए जाते हैं। ऐसे स्थान पर जहां दुखियों के दुख हरे जाते हैं, जहां आत्माओं का प्रभु मिलन कराया जाता है, जहां ज्ञान का सत्य प्रकाश मिलता है, अंधकार से हटाकर प्रकाश की ओर ले जाया जाता है, ऐसे सुंदर स्थान पर ये भगवान का भोग बनता है। बनाता कौन है इसको? मैं आप सबसे कहना चाहूंगी, यदि आप नियम मर्यादाओं में पावरफुल हैं तो जितना भोग लगाने का महत्व है उतना ही बनाने का महत्व है। इस अपॉर्चुनिटी को ना चूकें। ये नहीं कि मैं तो भाई हूं, ये तो बहनों का काम है, ऐसा नहीं। सेवा मतलब सेवा, और सेवा भाई बहनों की नहीं होती। सेवा का तो सीधा मेवा मिलता है, और मेवा भाई की आत्मा को भी चाहिए और बहन की आत्मा को भी चाहिए, लेकिन कंडीशन यदि नियम मर्यादाओं में पक्के हैं तो ही भोग बनाने की सेवा का आप ऑफर कर सकते हैं बहनों के सामने। और यदि नियम मर्यादाओं में थोड़ा भी कच्चा है तो प्लीज भोग से दूरी बना करके रखिए, नहीं तो पुण्य की जगह क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। तो इस सेवा को चूकना नहीं। जो समझते हैं कि हम अंदर से स्ट्रांग है वो ऑफर कर सकते हैं। बनाता कौन है इस भोग को, किसके हस्तों से बनता है ये भोग, जिसकी यादगार आज भी मंदिरों में अन्नपूर्णा और कामधेनु के रूप में है, उनके कमल हाथों से ये भोग बनता है। जिन बहनों को आप सफेद साड़ियों में देखते हो ना, वो साधारण नहीं है। जिस दिन उनके त्याग और तपस्या की कहानी लिखी जाएगी तो स्वयं भगवान अपनी डायरी में इनकी कहानी सोने के अक्षरों में लिखेगा। छोटी छोटी सी नादान उम्र में, छोटी छोटी सी नादान उम्र में अपना घर संसार छोड़कर चल दी भगवान के प्रेम में दीवानी होकर, सारा घर संसार छोड़ दिया और भगवान को ही अपना संसार बना लिया, सारे रंग शोक इच्छाएं श्रृंगार छोड़ दिया और भगवान के रंग में रंग गई। इतना ही नहीं, उसके बिछड़े लाल उससे मिला रही है, दुखियों के दुख दूर कर रही है, ज्ञान का प्रकाश फैला रही है। महान योगनी तपस्वनी त्यागनी ऐसी कमल हस्तों से वो भोग बनता है भगवान का, और जब वो प्रभु प्रेम में मगन होकर के ये भोग बनाती है तो उसकी खुशबू तीनों लोकों में पहुंचती है और देवताएं विचरण करते हैं। इसकी खुशबू पे लालायित होकर देवताएं विचरण करते हैं और कहते काश ये प्रभु प्रसाद हमारे नसीब में होता। उनके नसीब में 56 प्रकार के भोग तो होंगे, भोजन तो होंगे, व्यंजन तो होंगे, परंतु ये प्रभु प्रसाद केवल केवल आपके नसीब में है, ये देवताओं के नसीब में भी नहीं है। इस प्रभु प्रसाद से क्या क्या चमत्कार हुए हैं हमने देखा। माताओं ने भोग लगाया, मैं परम पवित्र आत्मा 100 बार 108 बार बड़े बड़े दारूड़ियों की दारू छूट गई, नशे छूट गए, घर में शांति आ गई, लड़ाकूपति शांत हो गया। ये भोजन सीधा मन पर असर करता है और सारी बुराई व्यसन कहाँ होते हैं, मन में होते हैं, मन को क्लीन करता है ये। और ये प्रभु प्रसाद तो जादू ही चमत्कारी योग होता है, सबसे ऊंचा योग माना गया है। जब हम बृहस्पतिवार को इस वृक्ष के पति को प्रसन्न करते हैं तो बृहस्पति की दशा धीरे 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 मेरे अनुकूल मेरे फेवर में होने लगती है और ये पूरे 21 जन्मों तक मेरे फेवर में रहती है। और मैं तो ये कहूंगी यदि यहाँ हम इस वृक्ष के पति को बृहस्पति को राजी कर लें तो 21 जन्म तो छोड़ो पूरे 84 जन्म हम इस गुरु को अपने फेवर में ला सकते हैं, इस बृहस्पति दशा को अपने फेवर में ले सकते हैं और हर जन्म में अपनी कुंडली में गजकेसरी योग का निर्माण कर सकते हैं। ये सुंदर सौभाग्य अभी ही परमात्मा ने हमें दिया है। ज्योतिष शास्त्र में यदि बृहस्पति वीक हो तो सबसे पहला प्रभाव उसका हमारी बुद्धि पर विवेक पर पड़ता है, और जिसका बुद्धि ही खराब हो विवेक ही खराब हो तो उसका जीवन नरक तुल्य बन जाता है। सोचने समझने की सूझबूझ की शक्ति ही ना हो जिसके पास तो उसका लाइफ कैसा होगा। बृहस्पति बिल्कुल डाउन, कैसा होगा उसका लाइफ, कुछ होगा उसके पास ना सोचने की ताकत ना करने की ताकत ना खाने की ताकत, कुछ भी नहीं होगा उसके पास। तो बृहस्पति दशा का जो सीधा प्रभाव पड़ता है वो हमारी विवेक शक्ति पर पड़ता है, हमारी बुद्धि पर पड़ता है। सद्बुद्धि सद्विवेक प्राप्त होता है और जिसके पास सद्बुद्धि सद्विवेक होता है चमत्कार करता है। पीछे हम भीड़ में थे जहाँ अकाल पड़ा था बहुत ज्यादा, उसी के लिए गए थे और बहुत ही वंडरफुल बात हुई कि हमारी भट्टी के पूरे 7 दिन बाद वहाँ ऐसी बारिश पड़ी कई सालों के बाद की बाढ़ आ गई, तालाब भी ओवरफ्लो हो गए। वहाँ एक माता के बच्ची ने सुसाइड कर लिया, मेडिकल करने गई थी, क्या हुआ पता नहीं, डेड बॉडी घर आई। उनकी माता बहुत डिप्रेशन में और इतनी डिप्रेशन में कि बहुत ही उग्र हो गई, वायलेंट जिसको बोले मारना कूटना पीटना शुरू कर दिया। उनके हस्बैंड ज्ञान में नहीं थे लेकिन किसी ने कहा कि वहां ले जाओ तो शायद कुछ असर पड़े। वो अपनी वाइफ को लेकर के आए सेंटर पर, पहले ही दिन आई तो जो सेंटर के पोट थे गमले वगैरह ऐसे फूल सब तोड़ ताड़ दिए, कंट्रोल में ही ना आए। लेकिन वहां की बहन जी ने बड़े पेशेंस से काम लिया, उसको बहुत प्यार किया और गुरुवार था उस दिन, गुरुवार का थोड़ा सा भोग उसको खिलाया, वो खा के शांत हो गई। फिर हर दिन आने लगी बहन जी, उसके लिए स्पेशली थोड़ा सा भोग बनाती, पहले बाबा को लगाती, उसमें ताकत भरती, उस बहन को खिलाती। पूरे 3 मास में वो माता ऐसी हो गई कि मेरे को कहा पहचानो इनमें से कौन सी माता है, मैं नहीं पहचान पाई। वो सबसे ज्यादा सेवा कर रही थी और सबसे ज्यादा हैप्पी थी वो माता जो भोग खा करके ठीक हो गई। कोई मेडिसिन नहीं, कोई दवाई नहीं, केवल भोग। इस भोग में इतनी ताकत है, नाम ही है दुख भंजन भोजन, जो दुखों को खत्म कर देता है। लेकिन कंडीशन क्या है, मस्ट कंपल्सरी क्या है, भावनाएं। तो ऐसे पवित्र बहनों के हाथों से ये भोग बनता है। अब देखिए हम इसे खाते कैसे हैं, बाबा को भोग लगाया, बड़े प्यार से लगाया, कोई तो कहेंगे वैल्यू ही नहीं है, टाइम ही नहीं देंगे भोग खाने का भी, 5000 साल में ऐसा मौका नहीं मिलेगा, ये प्रभु प्रसाद 5000 साल के बाद ही मिलेगा, किसी भी युग में नहीं मिलेगा। इसके लिए 10 काम भी छोड़ने पड़े तो छोड़ो, और दोनों हाथ फैलाकर बड़े श्रद्धा से, सर झुकाकर बड़ी भावना से इस भोग को स्वीकार करो, अंदर काम करेगा। जितनी भावना से खाएंगे उतना अंदर काम करेगा, इंजेक्शन की तरह काम करेगा। ये नहीं कि देख के क्या बहन जी रोज रोज चावल बना देते हो। एक समय था जब भक्ति मार्ग में हम प्रसाद चढ़ाते थे, 2 दाने भी यदि जूते में भी गिर गए तो उठा के सर पे लगा के खा जाते थे, प्रसाद है। अब डायरेक्ट भगवान का भोग आया है, वो मुझे चावल दिखाई दे रहे हैं, प्रसाद तो प्रसाद है, उसका कोई रूप रंग नहीं होता, वो केवल क्या है, बड़ी श्रद्धा से खा लीजिए उसको। जितनी भावना से खाएंगे उतने चमत्कारिक काम होंगे अंदर। श्रद्धा से, भावना से खाइए और चूकिए नहीं है मौका। कुछ भी करो, कैसे भी करो, गुरुवार का भोग जरूर लो, कैसे भी करो, ये भोग मिस नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें जादुई ताकत भरी हुई है। देखिए ज्योतिष शास्त्र में या बाहर के गुरु लोग क्या कहते हैं, जब किसी के ऊपर ग्रहचारी आ जाती है ना, बेचारा कोई बहुत ही परेशान हो गया, ग्रहचारी उतर नहीं, पंडितों के पास जाएंगे, गुरुओं के, ज्योतिषी को कुछ कर दो कुछ कर दो, तो कहेंगे ठीक है भाई तुम ना 5 ब्राह्मणों को जिमा दो। हिंदू धर्म में ब्राह्मणों को खिलाने की बड़ी महत्व है, सबसे बड़ा महापुण्य माना गया है ब्राह्मणों को जिमाने का, राइट? ब्राह्मणों को खिला दिया, माना पता नहीं कितना उत्तम पुण्य कर लिया। कैसे हैं आजकल के ब्राह्मण, पैदाइशी ब्राह्मण कैसे हैं आजकल के? सॉरी मुझे माफ करना, मैं सभी ब्राह्मणों के लिए नहीं बोल रही, कुछ ब्राह्मण अच्छे भी हैं लौकिक में, लेकिन कुछ ब्राह्मणों के घर में तामसिकता आ गई है, उनके भोजन में तामसिकता आ गई, व्यसन आ गए हैं जीवन में। पीछे हम महाबलेश्वर के पास वही है, वहां गए थे, वहां एक भाई नया नया बाबा का बच्चा बना, उसने कहा हम वैष्णव हैं और मेरे पिताजी कथावाचक हैं, परंतु बहन जी एक बात बताऊं अंदर की। क्या? बोला मैं जब से ज्ञान में आया हूं ना तब से मैंने नॉनवेज छोड़ा है, हमारे घर में सुबह अंडा जरूर बनता है और शाम को नॉनवेज जरूर बनता है, हमारे घर में हमारे चूल्हे पे जो कथावाचक है, जो वैष्णव कहते हैं अपने आप को। हमारे भाई का बेटा जयपुर हॉस्टल पढ़ने, इधर पढ़ने आया तो हॉस्टल में रहा वो, उसने मुझे फोन किया, मेरा रूममेट ब्राह्मण है। मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ा अच्छी बात है, अच्छा है तुम्हारा शुद्ध वातावरण रहेगा। उसने कहा नहीं दीदी मुझे तो ना अगरबत्ती लगानी पड़ती है कमरे में, क्यों, डेली बाजार से नॉनवेज लाता है कमरे में खाता है, बदबू फैला देता है। कश्मीर गए, वहां के पंडितों ने बताया कि कुछ पंडित इतने नॉनवेज खाते हैं कि शिवरात्रि पर शिवलिंग पर नॉनवेज का ही भोग लगाते, प्रसाद चढ़ाते हैं। अब बताइए ऐसे पंडितों को खिलाने से, ऐसे ब्राह्मणों को खिलाने से यदि ग्रहचारी उतर सकती है तो आप कैसे ब्राह्मण हो जो यहां बैठे हो, वो कुक वंशावली हैं और आप कैसे हो आप? सोचिए आप कैसे ब्राह्मण हो, जहां खुद ब्रह्मा बड़े नशे से कहता हो तुम ही तो मेरे बच्चे हो, जहां मां जगदम्बा कहती हो तुम ही तो मेरे बेटे और बेटियां हो, जहां शिव भी बड़े शान से कहता हो तुम ही मेरी संतान हो, जहां विष्णु भी झूम कर कहता हो तुम ही मेरे वंशज हो, तुम ही मेरे वंशज हो, वो है बाबा के बच्चे। कौन अपने आप को पक्का ब्राह्मण समझता है? पक्का बीके, एक कोई भी खड़ा हो जाए स्वेच्छा से, जिनमें से हाथ उठाया है ना, एक कोई भी खड़ा हो जाए उसमें से, आप पक्का बीके समझते हैं? श्योर? कब से ज्ञान में हैं? भाई जी, आपकी जेब में 5,000 रुपए पड़े हैं, आप शहर से बाहर कहीं जंगल में फंस गए, 3 दिन हो गए आपने भोजन नहीं खाया, आप भटके हुए हो, फंसे हुए, आपको कोई साधन नहीं मिल रहा घर आने का, 3 दिन से आपने कुछ नहीं खाया, आपको बहुत भूख लग रही है, ऐसा लग रहा बस बेहोश हो जाऊंगा अगर जल्दी खाने को नहीं मिला, आपकी जेब में 5,000 रुपए, सामने प्याज के पकौड़े बन रहे हैं गरम गरम, आपकी जान पर बनाई है, आपको लग रहा मैं बेहोश हो जाऊंगा, ईमानदारी से बताइए भगवान को साक्षी रख के क्या करेंगे आप? सुना क्या कहा, ये कैसा ब्राह्मण है, ताली तो बजाओ, बैठ जाइए, ये है बाबा के बच्चे। धरत परिये पर अब बताइए इन ब्राह्मणों को खिलाने से ग्रहचारी रहेगी क्या? अगर उन ब्राह्मणों को खिलाने से ग्रहचारी उतर सकती है तो ये कैसे ब्राह्मण है? अपना राइट हैंड उठाओ, अपने लेफ्ट कंधे पे थपथपाओ और कहो वारे में, वारे बाबा। पता चला कैसे ब्राह्मण है? यहां यदि एक कन्या खड़ी हो जाए तो 100 ब्राह्मणों पे भारी पड़ जाती है, अगर बाबा का एक पवित्र कुमार खड़ा हो जाए तो कितने ब्राह्मणों को लेके बैठ जाता है? 700 ब्राह्मण एक तरफ और बाबा का एक पवित्र कुमार, 700 ब्राह्मणों को खिला दो और बाबा के एक पवित्र कुमार को खिला दो बराबर। और यदि युगल एक पवित्र खड़ा हो जाए तो, यदि एक पवित्र जोड़ा खड़ा हो जाए तो हजारों हजारों ऋषि मुनियों पे भारी पड़ जाता है। जो ऋषि मुनि ये मान चुके थे, ये ठान चुके थे कि घर गृहस्थ में पवित्र रहना असंभव ही नहीं नामुमकिन है, और ये मानकर ये ठप्पा लगाकर जिन्होंने जंगल का वनों का रास्ता ले लिया, घर बार छोड़ के भाग गए कि घर गृहस्थ में रहकर पवित्र रहना इम्पॉसिबल असंभव, ये संसार की सबसे बड़ी चुनौती किसने स्वीकार की? बाबा के बच्चों ने स्वीकार की, और एक ने नहीं की, 10 ने नहीं, 50 ने नहीं, 100 ने नहीं, 1,000 ने नहीं, लाखों ने स्वीकार की है। उन्होंने घर गृहस्थ में रहकर अपने जीवन को पवित्र बना करके दिखाया है, ये बाबा के सबसे सुगंधित फूल हैं जो बहुत बड़ा एग्जाम्पल बने हैं संसार के सामने। और ऐसा नहीं कि कोई बूढ़े हैं, हमारे पास 25 साल के न्यू कपल भी हैं जो बिल्कुल पवित्र रहते हैं, हमारे पास आपको 35 का, 40 का, 50 का, 55 का, 80 का, 90 का, हर प्रकार का कपल मिलेगा, युगल मिलेगा, जिन्होंने इस पवित्रता को धारण किया है अपने जीवन में। तो ऐसे युगल सैल्यूट के लायक हैं या नहीं? है ना, मैं सैल्यूट करती हूँ ऐसे युगलों को जिन्होंने ये संसार का बेजोड़ काम करके दिखाया है, भगवान का नाम रोशन करके दिखाया है, दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती को स्वीकार करके दिखाया है और जवाब दिया है ऋषि मुनियों को। अब सोचिए 1,000 ऋषि मुनि एक तरफ और बाबा का पवित्र युगल एक तरफ, एक युगल को खिलाया मतलब 1,000 ऋषि मुनियों जितना पुण्य इन्हें प्राप्त हो जाएगा। इतनी ग्रेट सोल है यहाँ, ये ब्राह्मण परिवार दिखता साधारण जरूर है,
परंतु छुपे रुस्तम हैं।
देवकुल की महान आत्माएं हैं, सारा ही खानदान देवताओं का है। इतनी श्रेष्ठ, इतनी ग्रेट सोल हैं, इतनी पवित्र आत्माएं हैं, इनको खिलाने से ग्रहचारी रहेगी? अगर 5 पंडितों को, ब्राह्मणों को खिलाने से ग्रहचारी खत्म हो सकती है, तो इतने पवित्र ब्राह्मणों को खिलाने से ग्रहचारी रहेगी क्या?
नहीं रहेगी।
तो इमीजिएटली क्या होगा भोग लगाने से? जब सैकड़ों ब्राह्मण ये भोग खाएंगे, तो जो दिल की दुआएं आएंगी, ब्लेसिंग आएंगी ऊपर से भी और नीचे से भी, तो बड़े से बड़े दुख को घुटने टेकने ही पड़ेंगे, बड़ी से बड़ी आपदाओं को घुटने टेकने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये संसार की सर्वोच्चम सर्वोपरि आत्माएं हैं। आत्माएं भी 3 तरह की होती हैं, एक निम्न, एक मध्यम, एक उच्च क्वालिटी। बाबा के बच्चे कौन सी क्वालिटी वाले? उच्च क्वालिटी, राइट? लेकिन कंपलसरी क्या है? देखिए, भावनाएं कैसी हो, भावनाएं ऐसी हो जैसे एक शिव भक्त की थी। वो तो बाबा का बच्चा भी नहीं था, लेकिन अपनी भावनाओं से, अपनी भक्ति से उसने शिव को बांधा। उसके घर में कोई संतान नहीं, रोज प्रे करता है, हे प्रभु, हे भगवान, मेरे घर में भी एक पुत्र रतन हो जाए। लेकिन भक्त ऐसा था कि पानी भी शिव को अर्पित करके पीता था। हम कितनी बार पानी पीते हैं दिन में? बाबा याद आता है क्या? बाबा को याद करके दृष्टि देके फिर पानी पीते हैं? पानी सामने आया, गड़गड़ गड़गड़ अंदर। लेकिन वो शिव भक्त ऐसा था जो जल भी शिव को अर्पित करके पीता था। ऐसा बांधा भगवान को कि उसके घर में वो आत्मा भेजी, जब वो चलती थी तो हजारों कदम रुक जाते थे, जब वो मुस्कुराती थी तो उदास चेहरों की उदासी हर लेती थी, जहां खड़ी हो जाती थी वहां खुशियों की बहारें आ जाती थी। जो ब्राह्मण परिवार की जान थी, जो शिव की शान थी, ऐसी हमारी दादी प्रकाशमणि उस भक्त के घर में पुत्र रतन बन के जन्मी। अब सोचिए, अष्ट रत्नों में एक, कितने भाग्यवान होंगे वो माँ बाप जिस गोद में वो खेल रही है, जिसकी दृष्टि के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते थे, जो वास्तव में फरिश्ता बन गई थी। वो अकेली नहीं गई, अपने प्रकाश को साथ में ले गई। अगर भक्त की सुनवाई हो सकती है तो बच्चों की नहीं? भावना हो ऐसी जैसे हमारे बाबा की थी। एक माता ने अपने घर में पपीते का पेड़ बोया। जिस दिन पेड़ बोया उसी दिन संकल्प कर लिया, इसका पहला फल बाबा को खिलाऊंगी। हमारे भी मन में ये विचार आता है क्या? कोई सीजन का फ्रूट आया, लेकर खा गए, बाबा याद आता है या नहीं? मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अगर हम बाबा के लिए श्रद्धा से निकालते हैं ना, तो आपके घर में सब चीज खत्म हो जाएगी। वो चीज खत्म नहीं होगी, इतनी उसकी बरकत बरकत होगी, भरपूरता रहेगी। तो उस माता ने, जो गांव की माता है, संकल्प किया कि इसका पहला फल मैं बाबा को खिलाऊंगी। चमत्कार करता है, पीछे हम बीड़ में थे, जहां अकाल पड़ा था बहुत ज्यादा, उसी के लिए गए थे। और बहुत ही वंडरफुल बात हुई कि हमारी भट्टी के पूरे 7 दिन बाद वहां ऐसी बारिश पड़ी कई सालों के बाद कि बाढ़ आ गई, तालाब भी ओवरफ्लो हो गए। वहां एक माता के बच्ची ने सुसाइड कर लिया, मेडिकल करने गई थी, क्या हुआ पता नहीं, डेड बॉडी घर आई। उनकी माता बहुत डिप्रेशन में, और इतनी डिप्रेशन में कि बहुत ही उग्र हो गई, वायलेंट, जिसको बोले मारना कूटना पीटना शुरू कर दिया। उनके हस्बैंड ज्ञान में नहीं थे, लेकिन किसी ने कहा कि वहां ले जाओ तो शायद कुछ असर पड़े। वो अपनी वाइफ को लेकर के आए सेंटर पर। पहले ही दिन आई तो जो सेंटर के पोर्ट थे, गमले वगैरह ऐसे फूल सब तोड़ ताड़ दिए, कंट्रोल में ही ना आए। लेकिन वहां की बहन जी ने बड़े पेशेंस से काम लिया, उसको बहुत प्यार किया, और गुरुवार था उस दिन, गुरुवार का थोड़ा सा भोग, उसको विचार आता है क्या? कोई सीजन का फ्रूट आया लेकर खा गए, बाबा याद आते हैं या नहीं? मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, अगर हम बाबा के लिए श्रद्धा से निकालते हैं ना, तो आपके घर में सब चीज खत्म हो जाएगी, वो चीज खत्म नहीं होगी, इतनी उसकी बरकत भरकत होगी, भरपूरता रहेगी। तो उस माता ने, जो गांव की माता है, संकल्प किया कि इसका पहला फल में बाबा को खिलाऊंगे। पेड़ बड़ा हुआ, फल आया, बड़ा फुल साइज का पपीता, 2-2.5 किलो का। बड़ी खुश माता उस पपीते को देख करके, आधा कच्चा पक्का था, अखबार में लपेटा, ट्रेन में बैठ गई, पहुंच गई आबू पपीता लेकर के। भावनाएं देखिए उसकी। बूढ़ी माता गांव की, जैसे ही पांडव भवन के गेट पर पहुंची तो बाबा वहीं खड़े थे, आंखों में बड़ा प्यार लेकर, आंसू लेकर, गिड़गिड़ाते हाथों से कहा, बाबा ये पपीता मैं आपके लिए लेकर आई हूं। जिस दिन पेड़ बोया था बाबा, उसी दिन सोच लिया था इसका पहला फल मैं आपको खिलाऊंगी, और वो दिन आज आया है बाबा, आप इसे स्वीकार करो, मेरे ये तिल फूल है, आप इसे स्वीकार करो। तो बाबा बड़े खुश हुए, अरे वाह, तुम्हारी भावनाओं का तो जवाब नहीं। बाबा ने कहा चलो बच्ची कमरे में खाते हैं। थाली चाकू मंगाया गया, माता ने काट करके पपीता खिलाना शुरू कर दिया। माता खिलाए जा रही है, बाबा खाए जा रहा है, वही सीन था जैसे राम और बिल्ली का, वही सीन था जैसे विदुर के घर श्री कृष्ण ने साग रोटी खाया था जमीन पर बैठकर और आनंद पाया था। ऐसे ही बाबा झूम झूम के आनंदित होकर के वो पपीता खा रही है। वाह बच्ची वाह, वाह बच्ची वाह, आनंद की कोई सीमा नहीं, भरपूर आनंद ले रही है, झूम झूम कर वो पपीता खा रही है। जब पपीता खत्म होने को आया तो माता ने कहा, लास्ट पीस बचा था, बाबा ये मुझे भी खिला दो। तो बाबा उसको खिलाना नहीं चाहते थे, बाबा ने कहा नहीं बच्ची, ये तो तुम बाबा के लिए लाई हो ना। माता हक से जिद करने लगी, बाबा थोड़ा सा, बात पपीते की नहीं थी, बात थी बाबा के हाथ से, बाबा थोड़ा सा तो खिला दो, इतना सा थोड़ा सा। गुस्सामंद करने लगी, बाबा भी विवश हो गए, बिल्कुल नहीं चाहते थे किसे खिलाऊं, लेकिन विवश हो गए और लास्ट का छोटा सा पीस माता के मुख में रख दिया। और जैसे ही मुख में रखा, माता ने वहीं मुंह थोड़ा टेढ़ा करके हाथ में थूक दिया वो सब कुछ जो मुंह में रखा था। पपीता महाकड़वा था, अति कड़वा, और बाबा 2.5 किलो का खा गए, झूम झूम कर खा गए, स्वाद ले लेकर के खा गए, चेहरे पे शिकन भी नहीं आई। अब माता तो रोने लगी बच्चे की तरह, बिलख बिलख करके, हाय बाबा ये मैंने क्या कर दिया, मेरे हाथों से कितना बड़ा पाप हो गया, बाबा आपने तो चेहरे पे सिकन भी नहीं लाई, कैसे खा गए आप इतना कड़वा पपीता। रो रही है बच्चों की तरह, बहुत उदास हो गई। बाबा ने दोनों हाथों से उस माता के आंसू पोंछे, सर पे हाथ रखा, मुस्कुराए और कहा, बच्ची पपीता किसने खाया, कौन पपीता खा रहा था, किसने पपीता खाया। फिर बाबा ने बड़ी काम की बात कही, बाबा ने कहा, बच्ची बाबा तो तुम्हारी मिश्री से भी मीठी भावनाओं का स्वाद ले लेके आनंदित हो रहा था, पपीता किसने खाया, भूखा है वो, भूखा है भगवान। कहते ना भूखा है भगवान, किसका भूखा है, इतनी सी भावना मिली तो तृप्त हो गया, आनंदित हो गया, कड़वाहट में भी मिठास देखने लगा, भूखा है वो। मेरी ओर से भूखा रहना चाहिए, कितना रिस्पेक्ट देता है वो मेरी भावनाओं का, कितना सम्मान करता है, इतनी सी भावना का इतना बड़ा भाड़ा देता है। तो मेरे दिल में उसके लिए भावनाएं नहीं होनी चाहिए क्या? भाग्य की रेखा बदल गई माता की, एक इतिहास बना दिया उसकी भावना ने। हमारी दादी जानकी एक बार अहमदाबाद हॉस्पिटल में एडमिट, बड़ी दादी को लगा कि बचेगी नहीं, डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए, क्रिटिकल कंडीशन है। सारे जोन इंचार्ज को बुला लिया गया अहमदाबाद में, कभी भी कुछ हो सकता है, दादी बहुत सीरियस है, आ जाओ। सारे जोन इंचार्ज इकट्ठे हो गए, डॉक्टर्स की कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ दादी को। ऐसी कंडीशन में दादी ने अहमदाबाद की मुख्य बहन को बोला कि बहन मैं भोग लगा सकती हूँ, मुझे भोग लगाना है, इंतजाम करो कुछ। तो बहन ने कहा हाँ दादी हम इंतजाम करते, कहा कुछ अच्छा सा बना कर लाओ, क्योंकि दादी का मानना था मैं रूखा सूखा खाऊं चलेगा, लेकिन मेरे बाबा को भोग बढ़िया से बढ़िया लगना चाहिए। तो कहा कुछ अच्छा सा, कुछ बढ़िया सा बना कर लाना, साथ में फूलों का हार भी लाना। थोड़ी देर में भोग बनकर थाल सजकर दादी के सामने आ गया। ऐसी कंडीशन में जब सारे जोन इंचार्ज इकट्ठे किए कि कुछ भी हो सकता है, सीरियस कंडीशन है, ऐसी कंडीशन में दादी ने जमीन पर बैठकर आधा घंटा बाबा को भोग लगाया और शत वर्ष आयु का वरदान पाया। आज तक दादी हमारे बीच में है, जल्दी 101 साल की होने जा रही है कि नहीं है। मुक्तामणि बहन ने स्पेशली बोला जब हम चेन्नई गए, कहा बहन मेरा ये अनुभव जरूर सुनाना। कहती मैं यहाँ सेंटर बना रही थी, बाबा का सेवा केंद्र, पैसा खत्म हो गया, मेरा नियम है मैं मांगूंगी नहीं किसी से। तो फिर क्या किया, रोज हम सारी बहनें अमृत वेले उठती, थोड़ा कुछ भोग में बनाती, कभी फल कभी दूध कभी ड्राई फ्रूट, डेली अमृत वेले बाबा के सामने भोग रखती और कहती बाबा देख तेरा घर है, तेरा सेवा केंद्र है, तेरी सेवा होगी, तू बना कैसे भी बना। बड़े वंडरफुल एक्सपीरियंस, इतने वंडरफुल एक्सपीरियंस की आप कल्पना नहीं कर सकते। बाबा के कमरे में नोट रखे मिले थे, कभी इतने लाख, कभी इतने लाख, कभी इतने लाख, कभी किसी ने ऑफर की सीमेंट दे देंगे, किसी ने ऑफर की ये दे देंगे। और आज चेन्नई का सबसे फर्स्ट क्लास सेंटर, सबसे शाही वीआईपी सेंटर है उस बहन के पास। भोग लगाने से बहुत कुछ होता है। मैं कहूंगी कि जो बाबा के बच्चे हैं और जिनकी किचन बिल्कुल सात्विक है, जहां नॉन वेज आदि ना बनता हो, 24 घंटे में एक बार आप भी भोग जरूर लगाएं अपने यहाँ। क्योंकि जैसे भाई जी बताते हैं, स्वामान में रहकर बाबा को याद करके मैं परम पवित्र आत्मा रट्टे मार दो इसके, जाप कर लो इसका, तब भोग बनाओ। और ये नहीं कि मेरे बच्चे के लिए, मेरे पति के लिए बना रही हूँ, किसके लिए बना रही हूँ, हेड कौन है घर का, सबसे पहले किसको खिलाया जाता है, बाबा को, और फिर ये बाबा का परिवार। मेरा परिवार है क्या, मैं लाई थी कहीं से, कहाँ से लाई थी बताओ, जब आए थे तो परिवार साथ लाए थे, किसका परिवार है। भोग लगाओ बड़ी श्रद्धा से बैठकर, और फिर वो भोग पूरे भोजन में मिलाओ, पूरे परिवार को खिलाओ, घर में सुख शांति होंगी, चित्त शांत होंगे, अच्छे संस्कार मिलेंगे। और यदि कोई बुरी आदतें आ गई हैं तो वो भी ये भोग खा खा करके, क्योंकि अन्न का असर कहाँ पड़ता है, सीधा मन पर, और मन का असर किस पे पड़ता है, अन्न पर। इसीलिए मन में क्या रखना है जब भोग बनाएंगे, भोजन बनाएंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। तो पवित्रता के वाइब्रेशंस आपके हाथों से, नैनों से सब भोजन में भर जाएंगे। और जिस घर में भगवान भोजन करता हो, चारों युगों में वो कभी भी भूखा नहीं मरेगा, उसके भंडारे भरपूर रहेंगे, काल कंटक दूर रहेंगे। विनाश काल में भी दुनिया भूखी मरे तो मरे, लेकिन जिस घर से बाबा ने भोग स्वीकार किया है, चाहे वो धरती फाड़ कर दे या आसमान चीर कर दे, अंतिम श्वास तक उसे दाल रोटी जरूर मिलेगी, वो भूखा नहीं मरेगा, जिस घर से भगवान ने भोग स्वीकार किया। लेकिन कंडीशन ये है, किचन सात्विक होनी चाहिए। यदि आपके किचन में नॉनवेज बनता है तो भगवान उस भोग को बिल्कुल देखेगा भी नहीं, स्वीकार भी नहीं करेगा। अगर ऐसी किसी की रसोई है तो वो महीने का महीना इकट्ठा कर ले और सेंटर पर भोग लगवा दे, या फिर ड्राई फ्रूट या फल दूध आदि का लगा सकता है, लेकिन वहां के बर्तन वहां के चूल्हे का नहीं। लास्ट में कहानी सुनाकर मैं खत्म करूंगी। दोस्ती की कहानी जब आती है तो सुदामा और श्री कृष्ण का नाम सबसे पहले आता है। दोनों ही बचपन के बाल सखा, एक ही गुरुकुल में पढ़े, एक ही गुरु से शिक्षा ली, पर भाग्य की विडंबना देखिए, एक बन गए द्वारिकाधीश और एक महाकंगाल। क्या गलती कर दी थी सुदामा ने, क्या गलती कर दी थी सुदामा ने जो महाकंगाली उसके नाम आ गई। एक बार गुरु माँ ने लकड़ी चुनने भेजा था कुछ चने दे करके, लकड़ी चुन लेना और जब भूख लगे तो दोनों भाई मिल बांट के खा लेना। सुदामा थोड़ा पेटू टाइप था, उसे भूख बहुत लगती थी। कृष्ण अल्पहारी थे, दोनों सुस्ताने बैठे एक पेड़ के नीचे, कृष्ण आंख बंद करके ध्यान मगन थे। सुदामा ने सोचा इसे तो भूख पहले ही कम लगती, ऊपर से सो भी गया और सारे चने खा गया, कृष्ण का हिस्सा भी खा गया। और विचार आता है क्या कोई सीजन का फ्रूट आया लेकर खा गए, बाबा याद आते हैं या नहीं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, अगर हम बाबा के लिए श्रद्धा से निकालते हैं ना, तो आपके घर में सब चीज खत्म हो जाएगी, वो चीज खत्म नहीं होगी, इतनी उसकी बरकत भरकत होगी, भरपूरता रहेगी। तो उस माता ने, जो गांव की माता है, संकल्प किया कि इसका पहला फल में बाबा को खिलाऊंगे। पेड़ बड़ा हुआ, फल आया, बड़ा फुल साइज का पपीता 2-2.5 किलो का। बड़ी खुश माता उस पपीते को देख करके, आधा कच्चा पक्का था, अखबार में लपेटा, ट्रेन में बैठ गई, पहुंच गई आबू पपीता लेकर के। भावनाएं देखिए उसकी। बूढ़ी माता गांव की, जैसे ही पांडव भवन के गेट पर पहुंची तो बाबा वहीं खड़े थे, आंखों में बड़ा प्यार लेकर, आंसू लेकर, गिड़गिड़ाते हाथों से कहा, बाबा ये पपीता मैं आपके लिए लेकर आई हूं। जिस दिन पेड़ बोया था बाबा, उसी दिन सोच लिया था इसका पहला फल मैं आपको खिलाऊंगी, और वो दिन आज आया है बाबा, आप इसे स्वीकार करो, मेरे ये तिल फूल है, आप इसे स्वीकार करो। तो बाबा बड़े खुश हुए, अरे वाह, तुम्हारी भावनाओं का तो जवाब नहीं। बाबा ने कहा चलो बच्ची कमरे में खाते हैं। थाली चाकू मंगाया गया, माता ने काट करके पपीता खिलाना शुरू कर दिया। माता खिलाए जा रही है, बाबा खाए जा रहा है, वही सीन था जैसे राम और बिल्ली का, वही सीन था जैसे विदुर के घर श्री कृष्ण ने साग रोटी खाया था जमीन पर बैठकर और आनंद पाया था। ऐसे ही बाबा झूम झूम के आनंदित होकर के वो पपीता खा रही हैं। वाह बच्ची वाह, वाह बच्ची वाह, आनंद की कोई सीमा नहीं, भरपूर आनंद ले रही हैं, झूम झूम कर वो पपीता खा रही हैं। जब पपीता खत्म होने को आया तो माता ने कहा, लास्ट पीस बचा था, बाबा ये मुझे भी खिला दो। तो बाबा उसको खिलाना नहीं चाहते थे, बाबा ने कहा नहीं बच्ची ये तो तुम बाबा के लिए लाई हो ना। माता हक से जिद करने लगी, बाबा थोड़ा सा, बात पपीते की नहीं थी, बात थी बाबा के हाथ से, बाबा थोड़ा सा तो खिला दो, इतना सा थोड़ा सा। कुसामंद करने लगी, बाबा भी विवश हो गए, बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इसे खिलाऊं, लेकिन विवश हो गए और लास्ट का छोटा सा पीस माता के मुख में रख दिया। और जैसे ही मुख में रखा, माता ने वहीं मुंह थोड़ा टेढ़ा करके हाथ में थूक दिया वो सब कुछ जो मुंह में रखा था। पपीता महाकड़वा था, अति कड़वा, और बाबा 2.5 किलो का खा गए, झूम झूम कर खा गए, स्वाद ले लेकर के खा गए, चेहरे पे शिकन भी नहीं आई। अब माता तो रोने लगी बच्चे की तरह, बिलख बिलख करके, हाय बाबा ये मैंने क्या कर दिया, मेरे हाथों से कितना बड़ा पाप हो गया, बाबा आपने तो चेहरे पे सिकन भी नहीं लाई, कैसे खा गए आप इतना कड़वा पपीता। रो रही है बच्चों की तरह, बहुत उदास हो गई। बाबा ने दोनों हाथों से उस माता के आंसू पोंछे, सर पे हाथ रखा, मुस्कुराए और कहा बच्ची पपीता किसने खाया। कौन पपीता खा रहा था, किसने पपीता खाया। फिर बाबा ने बड़ी काम की बात कही। बाबा ने कहा, बच्ची बाबा तो तुम्हारी मिश्री से भी मीठी भावनाओं का स्वाद ले लेके आनंदित हो रहा था, पपीता किसने खाया। भूखा है वो, भूखा है भगवान। कहते ना, भूखा है भगवान, किसका भूखा है। इतनी सी भावना मिली तो तृप्त हो गया, आनंदित हो गया, कड़वाहट में भी मिठास देखने लगा। भूखा है वो, मेरी ओर से भूखा रहना चाहिए। कितना रिस्पेक्ट देता है वो मेरी भावनाओं का, कितना सम्मान करता है, इतनी सी भावना का इतना बड़ा भाड़ा देता है। तो मेरे दिल में उसके लिए भावनाएं नहीं होनी चाहिए क्या। भाग्य की रेखा बदल गई माता की, एक इतिहास बना दिया उसकी भावना ने। हमारी दादी जानकी एक बार जो महाकंगाली उसके नाम आ गई। एक बार गुरु माँ ने लकड़ी चुनने भेजा था, कुछ चने दे करके, लकड़ी चुन लेना और जब भूख लगे तो दोनों भाई मिल बांट के खा लेना। सुदामा थोड़ा पेटू टाइप था, उसे भूख बहुत लगती थी। कृष्णल पहाड़ी थे, दोनों सुस्ताने बैठे एक पेड़ के नीचे, कृष्ण आंख बंद करके ध्यान मगन थे। सुदामा ने सोचा इसे तो भूख पहले ही कम लगती, ऊपर से सो भी गया और सारे चने खा गया, कृष्ण का हिस्सा भी खा गया और कंगाली अपने नाम लिखवा ली। अटेंशन, ध्यान देना, कहीं ये गलती मेरे से तो नहीं हो रही, कहीं मैं हर रोज भगवान का हिस्सा तो नहीं खा रही। सोचना, विचार करना गहनता से, जो सुदामा ने गलती की थी ये गलती मुझसे तो नहीं हो रही। यदि यहां मैंने भगवान का हिस्सा खा लिया तो जन्म जन्म के लिए कंगाली अपने नाम लिखवा ली। अगर उसने मेरी थाली में दो रोटी खाने को दी है तो एक ने वाला आधी रोटी, उसका हिस्सा श्रद्धा से सम्मान से निकालने की ताकत मुझ में नहीं है। यस या नो, चाहिए निकालना या नहीं। उसने मेरी जेब में यदि 100 रुपये दिए हैं तो 1 रुपया उसका हिस्सा निकालने की ताकत मुझ में नहीं। जब कृष्ण को पता चला कि सुदामा बड़ी दयनीय स्थिति से गुजर रहा है, तन ढकने को कपड़ा नहीं, सर ढकने को छत नहीं, पेट भरने को अन्न नहीं, तो उसे बड़ी दयाई संकल्प भेजता है, तू मुझसे आके मिल, तू मेरा बाल सखा है, मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकता, भूलों की भरपाई करनी है। सुदामा जाना तो चाहता है, अपनी पत्नी से कहता है कैसे जाऊं खाली हाथ, क्योंकि भारत की परंपरा है जब भी प्रिय जन के पास जाओ तो खाली हाथ, भले 2 फल लेकर जाओ किसी के दरवाजे पर, खाली हाथ तो मृत्यु में जाया जाता है। किसी के दरवाजे पर जब जाओ प्रेम स्नेह से तो कुछ लेकर जाओ, नहीं तो अशुभ अपशगुन माना जाता है। वो तो मेरा प्रिय सखा है, उसके दरवाजे पर मैं खाली हाथ कैसे जाऊं। उनकी धर्मपत्नी कहती, सुनो मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। पूरी झोपड़ी ढूंढ लेती है, 3 मुट्ठी चावल गले सड़े मिलते, ये है ये ले जाओ। अब सुदामा धर्म संकट में, एक तरफ 3 मुट्ठी चावल, एक तरफ भूख से प्राण त्यागते बच्चे, क्या करूं, कृष्ण के लिए ले जाऊं या बच्चों को प्राण दान दे दूं। उनकी पत्नी बड़ी समझदारी से काम लेती है, कहती है अगर आज आपने ये चावल खिला दिए, कल फिर वही स्थिति है भूखों मरने की, इससे बेस्ट तो ये है कि आप इन्हें ले जाओ। अपनी साड़ी का एक हिस्सा मैला कुचेला फटा पुराना देती, उसी में चावल लपेटती और बेच देती है, जाओ। फिर क्या होता है वो अच्छी तरह पता है आप सबको, जैसा लिखा है शास्त्रों में, ये यही की कहानियां हैं सारी। बड़ा सुंदर भव्य स्वागत। अब मुद्दे की बात पर आते हैं, कृष्ण भूलों को ठीक करना है, ऊपर वाले ने भी मौका दिया है, कर लो भूले ठीक। शाम का वक्त है, संध्या काल का समय है, दोनों एकांत में बैठे हैं। संध्या काल का समय जरूर है, पर अब भाग्य का सूरज उगने वाला है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुदामा तू इतने दिन के बाद आया, खाली हाथ आया, मेरे लिए कुछ लाया नहीं। अब आप सोचिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, गहराई से सोचिए, जिसकी पूरी द्वारिका सोने की, जिसका सिंहासन सोने का, महल सोने का, जिसके बर्तन सोने के, उसे कुछ चाहिए? उसे कुछ चाहिए? ऊपर वाले को कुछ चाहिए? हमारी क्या औकात है जो हम उसे दे सके? है हमारी कोई औकात जो हमें दे सके? उसे कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तो हमें। उसे कुछ नहीं चाहिए, वो तो सृष्टि का रचियता है। यदि वो चाहे तो एक सेकंड में हीरो की बरसात कर सकता है पूरे वसुंधरा में। उसे किसी का कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। श्री कृष्ण को भी कुछ नहीं चाहिए था, केवल भूलों की भरपाई करनी है। उसको भी कुछ नहीं चाहिए, केवल यहाँ सुधारने का प्रयास है, बनाने का प्रयास है। सुदामा लाया तो है पोटली, पर बड़ी लज्जा आ रही, कैसे दूं? इतने ठाट बांट और कहा मेरी ये सड़ी गली पोटली कैसे दूं? देना भी चाहता है पर संकोच आ रही है, कैसे दूं? बड़े हक अधिकार से श्री कृष्ण वो पोटली लेते हैं, कहते हैं बड़े अपनापन दे करके, सुदामा तेरी छिपाने की आदत अभी भी नहीं गई। ऊपर वाला भी कहता है, मुझे लाख नहीं, तुम श्रद्धा से एक रुपया भी दो तो करोड़ों की कीमत में लगा दूंगा उसको। बस भावना होनी चाहिए उसके पीछे, बस भावना होनी चाहिए उसके पीछे। अब वो पोटली खोलते हैं, एक मुट्ठी चावल खाते और कहते, सुदामा एक लोक तेरे नाम, भूलों की भरपाई हो रही है। फिर दूसरी पोटली, पोटली में से मुट्ठी निकालते खाते, दूसरा लोक भी तेरे नाम। अब तीसरी मुट्ठी भरते तो देव मंडल हिल जाता है, ये क्या करने चला है भाई, रोको कोई, इतना भाव विभोर हो गया, सब कुछ लुटा रहा है। तब उनकी पत्नी आकर हाथ थाम लेती है, कहती, स्वामी ये क्या कर रहे हो, हमारा भी तो हिस्सा है, हमें भी तो दो। उनकी धर्म पत्नी पूछती है, इतने प्रेम में पागल हो गए, इतने भाव विभोर हो गए, अपने सहित अपना सब कुछ सुदामा को देने चले हो, सब कुछ वार दिया। तो ये कहानी सुनाने का भाव ये था, क्या जवाब दिया अपनी धर्म पत्नी को जो ऊपर वाला बोल रहा है। सुदामा के पास तीन ही मुट्ठी चावल उसकी सारी संपत्ति थी। वो चाहता तो अपने बच्चों के प्राण बचा सकता था, सारी ही संपत्ति निसंकोच वो मेरे लिए ले आया। अब इसकी बारी खत्म, अब बारी मेरी शुरू होती है। ऊपर वाला भी कहता है, तू एक बार तो तू बुद्धि से समर्पित होकर देख, एक बार तो तू मेरे को तेरा करके देख, अपने आप को तुझ पे कुर्बान ना कर दूं तो कहना, मेरे सहित मेरा सब कुछ तेरा, मेरे सहित मेरा सब कुछ तेरा हो जाएगा। उसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे माला माल कर देगा। तो आज से बड़ी श्रद्धा से, बड़े सम्मान से भगवान का हिस्सा बड़े प्यार से हम कहां रखेंगे, स्वइच्छा से। पर कंडीशन क्या है वो मत भूलना। कंडीशन क्या है? भावनाओं का होना मस्ट कंपलसरी, भाड़ा केवल भावनाओं का मिलेगा। पता चला परम सद्गुरु कैसे राजी हो सकता है, कैसे इमीडिएटली हम अपने पुण्यों को बढ़ा सकते हैं और भोगनाओं को डाउन कर सकते हैं। तो आप सदा सुखी रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद, ओम शांति। जो महाकंगाली उसके नाम आ गई। एक बार गुरु माँ ने लकड़ी चुनने भेजा था, कुछ चने दे करके, लकड़ी चुन लेना और जब भूख लगे तो दोनों भाई मिल बांट के खा लेना। सुदामा थोड़ा पेटू टाइप था, उसे भूख बहुत लगती थी। कृष्ण अल्पहारी थे, दोनों सुस्ताने बैठे एक पेड़ के नीचे, कृष्ण आंख बंद करके ध्यान मगन थे। सुदामा ने सोचा इसे तो भूख पहले ही कम लगती, ऊपर से सो भी गया और सारे चने खा गया, कृष्ण का हिस्सा भी खा गया और कंगाली अपने नाम लिखवा ली। अटेंशन, ध्यान देना, कहीं ये गलती मेरे से तो नहीं हो रही, कहीं मैं हर रोज भगवान का हिस्सा तो नहीं खा रही। सोचना, विचार करना गहनता से, जो सुदामा ने गलती की थी ये गलती मुझसे तो नहीं हो रही। यदि यहां मैंने भगवान का हिस्सा खा लिया तो जन्म जन्म के लिए कंगाली अपने नाम लिखवा ली। अगर उसने मेरी थाली में दो रोटी खाने को दी है तो एक ने वाला आधी रोटी उसका हिस्सा श्रद्धा से सम्मान से निकालने की ताकत मुझमें नहीं है। यस या नो, चाहिए निकालना या नहीं? उसने मेरी जेब में यदि 100 रुपये दिए हैं तो 1 रुपया उसका हिस्सा